नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि हवाई अड्डों पर पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि विमानों से पक्षियों को टकराने के मामले सामने आते हैं। हवा में विमान के उतरते समय इस तरह की घटनाएं अधिक होती हैं। सिंधिया ने कहा, हमने हवाई अड्डों पर पक्षियों के विमान से टकराने के मामलों को रोकने के सभी उपाय किए हैं। इन उपायों में पक्षियों को भगाने वाला यंत्र, साउंड गन और अन्य तरीके शामिल हैं। सिंधिया ने संवाददाताओं से कहा कि वन्य जीव संरक्षण के लिए पिछले लगभग 9 वर्षों में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की बीपी के संयुक्त उद्यम जीओबीपी ने 20% एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल पेश किया है। ये सरकार के कच्चे तेल का आयात और कार्बन उत्सर्जन कम करने के कार्यक्रम के अनुरूप है, कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा। इसके साथ ही जीओबीपी E20 ईंधन उपलब्ध कराने वाले पहले खुदरा विक्रेताओं में शामिल हो गई है। कंपनी ने कहा, E20 ईंधन के अनुकूल वाहनों के मालिक चुनिंदा जीओबीपी पेट्रोल पंप से ये ईंधन ले सकेंगे। जल्द ही इसका विस्तार पूरे नेटवर्क में किया जाएगा। E20 में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के कार्यक्रम से जहां कच्चे तेल का आयात घटेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, वहीं से किसानों की भी आय बढ़ेगी। आयकर विभाग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि आयकर उपायुक्त द्वारा 1,100 करोड़ रुपए की मांग नोटिस पर फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कोई जबरिया कार्रवाई नहीं की जाएगी। कंपनी ने आकलन वर्ष 2016-17 और 2018-19 के लिए 31 जनवरी 2023 को जारी मांग नोटिस को चुनौती देने वाली 2 रिट याचिकाएं दायर की हैं। न्यायमूर्ति बीएम श्याम प्रसाद ने 6 फरवरी 2023 को अपने अंतरिम आदेश में 24 फरवरी को अगली सुनवाई तक कोई जबरिया कार्रवाई नहीं करने के विभाग के आश्वासन को दर्ज कर लिया। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, प्रतिवादी की तरफ से कहा गया है कि नोटिस जारी करने में कानून का बिल्कुल उल्लंघन नहीं हो सकता, लेकिन अपील के दौरान कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसीलिए ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 32 विभाग इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था से जुड़ जाएंगे। इसके माध्यम से सभी कंपनियां अपने कारोबार के लिए मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग सकेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अनुराग जैन ने यहां कहा कि अभी तक 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक आदि शामिल हैं। अनुराग ने भारत जापान व्यापार सहयोग समिति की संयुक्त बैठक में ये बात कही। इस व्यवस्था से अनुपालन बोझ कम होगा, परियोजना में लगने वाला समय कम होगा तथा कारोबार शुरू करना और उसका परिचालन आसान होगा। राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था से सभी एकीकृत राज्यों और केंद्रीय विभागों के लिए अनुमोदन की पहचान, आवेदन और मंजूरी की मौजूदा स्थिति का पता चलता रहता है। हिमाचल उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के परवाणु दक्षिण क्षेत्र प्रवर्तन इकाई ने बुधवार देर शाम परवाणु स्थित अडानी विल्वर लिमिटेड के भंडार का निरीक्षण किया। उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को पीटीआई भाषा को बताया कि ये कंपनी के भंडार की नियमित जांच का हिस्सा है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भंडारण करने वाली कंपनी राज्य में नागरिक आपूर्ति विभाग और पुलिस विभाग को भी माल उपलब्ध कराती है। पिछले साल कंपनी ने 135 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। उत्पाद शुल्क विभाग ने बताया कि कंपनी का पूरा जीएसटी कर क्रेडिट के माध्यम से समायोजित किया गया है और नगद में कोई भुगतान नहीं हुआ है। अडानी समूह के 7 कंपनियां राज्य में कारोबार कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ चर्चा की और उनसे क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन के लिए विश्व स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने आगामी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक के संबंध में आईएमएफ की एमडी के साथ वर्चुअल वार्ता की। ये बैठक इसी महीने बेंगलुरु में होगी। सीतारमण ने G20 में फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों पर भारत की अध्यक्षता को समर्थन देने के लिए आईएमएफ का आभार जताया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि जॉर्जीवा ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के लिए और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान के लिए देश को धन्यवाद दिया। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि दोनों नेताओं ने तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड में जनवरी में 12,546 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसका प्रमुख कारण नियमित अंतराल पर किए जाने वाले निवेश यानी SIP के प्रति लोगों का आकर्षण है। शुद्ध रूप से ये निवेश 4 महीने में सर्वाधिक है। इससे पहले दिसंबर में 7,303 करोड़ रुपए, नवंबर में 2,258 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 9,390 करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए गए थे। वहीं सितंबर में 14,100 करोड़ रुपए का प्रवाह हुआ था। म्यूचुअल फंड इकाइयों के शीर्ष निकाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार ये लगातार 23वां महीना है जब इक्विटी शेयर से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं में पूंजी प्रवाह हुआ है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।